ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रापतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तस्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमतस्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्तधारिणे ॐ शान्तिः 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 शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृदाय नमः ओम नमो मृदाय मृदाय नमः ओम नमो मृदाय मृदाय नमः ओम मृदाय नमः ओम मृदाय नमः ओम नमो मृदाय मृदाय नमः ओम मृदाय नमः ओम नमो मृदाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरंतरम जप मन शिव शिव निरंतरम भज मन शिव शिव जप मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव स्मर मन शिव शिव निरंतरम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओ ओ ओ प्रभु कृपा से एक साल के बाद प्रेमपुरी आश्रम में फिर आना बना आ गए और एक क्रम कई वर्षों से चल रहा है। देखते जाएं कब तक चलेगा। जो चल चुका है वो तो हमने अनुभव किया देखा है, अब आगे कब तक चलेगा ये प्रभु जानते हैं, परमात्मा ही जानते हैं। एक बार तो लग रहा था कि शायद अब प्रेमपुरी की यात्रा बंद हो जाएगी, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से सुना, टीवीओं में देखा, खंड प्रलय हुआ है नेपाल में भूकंप के माध्यम से, और उस समय पोखरा के आश्रम में थे हम, और इस जीवन के लिए कुछ दाना पानी भर रहे थे, यानी खाना खाने बैठे थे 12 बजे का समय, आधे भोजन खा चुके होंगे, और संयोग से उस दिन आश्रम का पोखरा आश्रम का वार्षिकोत्सव था, लगभग 100 आदमी भक्त लोग इकट्ठे हुए थे और भंडारा था। सुबह रुद्री हुई, भंडारा हुआ, सब लोग हॉल में बैठ के खाना खा रहे थे, और खाते खाते ही अचानक कंपन शुरू हो गया, पहले तो लगा ये क्या हुआ, तुरंत पता चल गया कि भूकंप आ गए। सभी लोग भागे, कोई थाल लेकर भागे, कोई थाल छोड़कर भागे, देख रहा हूं। और अपने राम तो खाए जा रहे बैठे, अब करें क्या, भागेंगे तो कहां भागेंगे। यह है कि छत के नीचे से छत के बाहर जाएंगे, यही ना है, बाहर बहुत बड़ा मैदान था, सब लोग मैदान में गए, हम बैठे रहे देखते रहे। अब बंद होगा, अब बंद होगा, अब बंद होगा, मैं सोचता हूं तो बंद ही नहीं होता है, और बढ़ता जा रहा है, और हिलाया जा रहा है। तो कुछ देर के बाद तो फिर मन में दुविधा पैदा हो गई, बैठे रहें कि उठें हम भी। पहले तो ये हुआ कि उठने की क्या जरूरत है, फिर वो जो हिलाने के लिए उस छोड़ नहीं रहा है, वो हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है, मन में दुविधा हुई उठें कि बैठें। फिर भी बैठे रहे तो थोड़ी देर में शांत हो गया। अब ये तो अध्यास तो है ही है, जीव भाव तो गया नहीं है। उस दिन ऐसा लग रहा था कि शायद इतने दिन से वेदांत सुनाते सुनाते अब तो पक्के वेदांती हुए होंगे, देहाध्यास खत्म हुआ होगा, लेकिन जन्म जन्मांतरीय संस्कार इतनी जल्दी नहीं जाता है। ये बात अलग है कि और सामान्य प्राणियों की अपेक्षा कुछ दृढ़ता है, लेकिन पूरी तरह तो गया नहीं है। बाद में धरती हिलने का तो बंद हो गया, तर दिल हिलने लग गया, शरीर कांप रहा है तो दिल कांपने लगा, ये हो क्या रहा है। फिर भी खाना उना खाए, बाहर निकल आए। उसके बाद पराकंपन बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, पराकंपन वो तरंगे चलते रहती हैं, बाहर आके कुर्सी में बैठे फिर छोटे छोटे तरंग आ रहे हैं। आज तक डेढ़ महीना होने जा रहा है, आज तक पराकंपन 4.5 स्केल के भूकंप अभी भी निरंतर दिन में 4-5 बार आ रहे हैं। पूरे नेपालियों के मन में त्राही त्राही है, करे क्या। तो उस समय लगा कि शायद अब प्रेमपुरी जाना बनेगा नहीं, जीवन यही समाप्त तो होगा। लेकिन एक मिनट के बाद जब वह निकल के चला गया तो जीवन की आशा फिर रही। तो प्रभु कृपा से आ गए, आ तो गए भाई, आ गए, अब आगे चलेगा, वेदांत प्रवचन चलता ही रहेगा, बीच बीच में भूकंप के कहानी भी सुनाते रहेंगे। इस साल नया घटना है, उसका अनुभव आपको सुनाते रहेंगे। आप लोग बंबई वासी तो शायद जीवन में भूकंप का अनुभव नहीं किया होगा, कच्छ भुजवासी लोगों ने किया होगा, जो गुजरात में कच्छ भुज में वहां तो कैसा हुआ, तो वो तो 9 स्केल का लगभग था। अभी काठमांडू में जो गया, नेपाल में जो गया, वो 8 स्केल का था। तो ये ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज का सत्य संकल्प, कि प्रेमपुरी आश्रम स्थापना हुई बंबई में, और दिवंगत ट्रस्टियों का अथक परिश्रम, और वर्तमान ट्रस्टियों का भी लगनशीलता तत्परता के चलते ये प्रेमपुरी आश्रम का कार्यक्रम निरंतर चल ही रहा है और भगवत कृपा से, संतों की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, साथ ही भक्तों के सहयोग से ये चलता रहेगा। अब जब तक बनेगा हम आते रहेंगे, आ ही रहे हैं और आते रहेंगे। विगत कई वर्षों से हमने वेदांत का प्रौढ़ ग्रंथ, विशेष करके वेदांत में जो मननीय प्रसंग है, श्रवण के बाद मनन करना, तत्संबंधी जो एक ग्रंथ था त्रोटकाचार्य जी का, श्रुतिसार समुद्धरण, इसको आधार बनाकर वेदांत वाक्यों पर खूब मनन किया। लगभग 4 वर्ष चला है ना, तो पिछले बार पूरा किया। उसी समय कुछ जिज्ञासुओं के द्वारा ये पूछा गया कि अगले साल से क्या शुरू करेंगे, ये हमसे ही पूछते हैं कि सभी से पूछते हैं, भगवान जाने। अगले साल क्या शुरू करेंगे ये शब्द, और अगले साल से क्या शुरू करेंगे ये शब्द में बड़ा फर्क है। वो क्या फर्क है? अगले साल क्या करेंगे ये तो शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए कोई एक टॉपिक्स लेकर उसके बारे में चर्चा करना, ये हुआ अगले साल क्या करेंगे। अगले साल से क्या करेंगे इसका मतलब हुआ वो निरंतर चलेगा, कई दिन तक या कई साल चलेगा। वो ऐसा कोई ग्रंथ लिया जाए कि वो कई साल चले। तो इस जिज्ञासा के साथ साथ ही 2-4 विकल्प उठे थे, क्या शुरू करें क्या शुरू करेंगे। तो कुछ जिज्ञासुओं के द्वारा ज्यादातर, आप लोग तो जानते ही हैं, हम प्रेमपुरी आश्रम में प्रातःकालीन प्रवचन में वेदांत के अलावा अन्य चर्चा करना नहीं चाहते। और अन्य चर्चा के लिए हमने अलग समय निर्धारण किया है और चर्चा की भी है। लेकिन प्रातःकाल जो प्रवचन का क्रम है उसमें हमने वेदांत को प्राथमिकता दी है, वेदांत के अलावा दूसरी चर्चा हम करना नहीं चाहते। तो उस विचार के क्रम में 2-3 प्रस्ताव आए थे, तो जिसमें वेदांत का जो प्रक्रियागत ग्रंथ है जिसको प्रक्रिया बोलते हैं, प्रकरण और प्रक्रिया ये अलग चीज है। तो प्रक्रियागत ग्रंथ जो 2-3 ग्रंथ हैं जिसमें वेदांत की प्रक्रिया है, क्या बोलोगे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्रक्रिया को है मेथोडोलॉजी प्रोसेस क्या है मुझे पता नहीं है आप लोग समझदार हैं पढ़े लिखे हो हम तो गंवार हैं वेदांत में बहुत ज्यादा प्रचलन शब्द जिन शब्दों का वेदांत चर्चा में बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है तो उसी को हम लोग प्रक्रिया बोलते हैं तो प्रक्रिया ग्रंथ में कुछ ग्रंथ प्रसिद्ध है सबसे पहले विचार चंद्रोदय उसमें पारिभाषिक शब्दों का खजाना है वेदांत में प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं पारिभाषिक शब्द उसका एक खजाना है विचार चंद्रोदय तो अच्छी तरह विचार चंद्रोदय पढ़ा जाए तो वेदांत के शब्द और शब्द के अर्थों से हम परिचित हो सकते हैं जैसे कुटस्थ क्या है जीव क्या है साक्षी क्या है आवास क्या है अवच्छिन्न क्या है अवच्छेदक क्या है आदि आदि उसके बाद हिंदी भाषा में बहुत ही सुंदर निश्चल दास जी का एक ग्रंथ है विचार सागर हालांकि विचार सागर बहुत ही पांच सौ वर्ष भी नहीं हुआ है विचार सागर एक प्रकार से पंचदशी का अनुवाद है पंचदशी मूल संस्कृत ग्रंथ है विद्यारण्य मुनि जी का तो विचार सागर हिंदी भाषा का ग्रंथ है तो नव जिज्ञासुओं के लिए विचार सागर पठनीय है विचार चंद्रोदय विचार सागर मैं भूल गया वृद्ध हो गया लेखक कौन है मुझे ख्याल नहीं आ रहा है इसी तरह फिर वेदांत का परिभाषा वेदांत सार वेदांत परिभाषा आदि है और सबसे प्रसिद्ध पंचदशी से पहले विवेक चूड़ामणि को प्राथमिकता दिया करते थे आदि गुरु शंकराचार्य जी की रचना है 500-550 श्लोक 580-585 श्लोक का है विवेक चूड़ामणि वो अभी प्रकरण प्रक्रिया ग्रंथ है बाद में जब विद्यारण्य स्वामी जी ने जब पंचदशी लिखी तो उसके बाद नवजिज्ञासुओं के लिए वेदांत में प्रवेश करने वाले नवजिज्ञासुओं के लिए बहुत उपयोगी हुआ पंचदशी और बहुत ही सुंदर ढंग से वेदांत की प्रक्रियाओं को समझाया है अच्छी युक्तियों का प्रयोग किया गया है दृष्टांतों का प्रयोग किया गया है, पूर्व पक्ष उठाया गया है और उसके माध्यम से वेदांत के पारिभाषिक शब्दों का लक्षण सहित व्याख्या की गई है। तो बहुत सुंदर है पंचदशी ग्रंथ। तो इसका नाम पंचदशी क्यों पड़ा? तो इसका मूल शब्द है पंचदश, यानी पांच और दस, पंचदश। आप लोग दस और पांच करते हो, है ना? बड़े अंकों को पहले लेकर छोटे अंकों को बाद में प्रयोग करते हो, तो दस प्लस पांच पंद्रह। अब यहां विद्यारण्य मुनि जी ने छोटे को पहले लिया, छोटे अंकों को पहले लिया, बड़े अंकों को बाद में लिया, पांच प्लस दस कर दिया। दस र पांच कहो या पांच र पांच और दस कहो, टोटल पंद्रह ही होते हैं। दस और पांच कहो तो टोटल पंद्रह, पांच और दस कहो तो टोटल पंद्रह। इसका नाम है पंद्रह। इसका नाम क्या हुआ? अपने हिंदी में क्या कहेंगे? इस पुस्तक का नाम हिंदी में क्या कहेंगे? पंद्रह। पंच और दस तत्संबंधी यम, संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग पुस्तक लाई, पुस्तक को स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। तो पंचदशी, यम पंचदशी ग्रंथ, पंचदश पंचदशी तत्संबंधी पंचदशी, पंचदश से संबंधित ग्रंथ पंचदशी ग्रंथ। अर्थ हुआ पंद्रह ग्रंथ, पंद्रह ग्रंथ। अब क्या है पंद्रह ग्रंथ? ग्रंथ तो एक ही है महाराज। तो इसमें तीन खंड बनाया है विद्यारण्य मुनि जी ने। इस ग्रंथ का तीन भाग, तीन खंड किया है। प्रथम पांच खंड, पांच प्रथम पंचक, उसको विवेक से जोड़ दिया है। तो पहला पांच तो विवेक से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रथम पंचक विवेक पंचक। यूं कहो कि पहला विवेक पंचक। विवेक शब्द का अर्थ होता है अलग करना। सामान्य हिंदी भाषा में विवेक शब्द का अर्थ होता है जानना, पहचानना आदि, है ना? लेकिन संस्कृत भाषा के हिसाब से विवेक शब्द का अर्थ होता है अलग करना। विचरित पृथक भावे धातु से विवेक बनता है, पृथक भावे पृथककरण। और शायद वही पृथककरण अर्थ में ही विवेक शब्द जो संस्कृत में प्रयोग हुआ है और हिंदी भाषा में बीनना शब्द आप प्रयोग करते हो, बीनना, दाल बीनो, चावल बीनो, पकाने से पहले चावल क्या करते हो, शब्द प्रयोग होता है चावल बीनो। तो बीनना, चावल बीनो यदि कोई कहता है तो उसका अर्थ क्या निकला, अलग करो। चावल को अलग करो और चावल से विजातियों को अलग करो। ये चावल के अलावा अन्य जो विजातीय हैं उसमें, चावल जाति के अलावा अन्य जाति के जो कुछ भी हों सबको क्या करना है, अलग करना है। उसमें धान होगा तो अलग करोगे, पत्थर होगा तो अलग करोगे, मिट्टी होगी तो अलग करोगे, बाल होगा तो अलग करोगे, चावल के अलावा सभी को तुम अलग करोगे, एक वर्ग में रखोगे, और चावल चावल के जितने भी जाति के हैं दाने हैं उनको एक वर्ग में रखोगे, चावल जाति के जितने दाने हैं वो एक वर्ग में रखोगे, तद भिन्न विजातीय जितने हैं उनको सबको एक तरफ करोगे। उस प्रक्रिया को आपकी भाषा में आप लोग चावल पीनना कहोगे। और दाल पकानी हो तो क्या करोगे, चावल बीनोगे कि दाल बीनोगे, तो अर्थ क्या निकला, दाल जाति को एक तरफ करो और दाल से अलावा विजातीय जो कुछ भी है उन सबको अलग करो। तो हो गया दाल बिनना। जो शब्द प्रयोग कर रहे हो उस जाति को एक तरफ करो, और जो शब्द आपने प्रयोग नहीं किया वो सब विजातीय हो गए उनको अलग करो। इसी तरह यहां विवेक शब्द प्रयोग हुआ है। तो पंचदशी के जो पांच प्रकरण हैं प्रारंभ के, वो पांच विवेक से संबंधित हैं। पहला प्रकरण, जैसे पहला प्रकरण तत्व विवेक प्रकरण, पंचदशी में पहला प्रकरण क्या है, तत्व विवेक प्रकरण, जो तत्व है वो सब मिले हुए हैं, एक तत्व दूसरे तत्व से मिला है, दूसरा तत्व तीसरे तत्व से मिला है, तीसरा तत्व चौथे तत्व से मिला है, तो उनको बीनना है, अलग अलग करना है। और वेदांत में मूल रूप में तत्व शब्द से एक ही वस्तु को लिया जाता है। बाकी वस्तु को तत्व शब्द से नहीं लिया जाता है, बाकी सब अतत्व है। तत्व शब्द बना है तदेव इति तत् तद्भाव तत्व, जो है वो तदेव इति तत्व, जो नहीं है वह तत्व नहीं हो सकता है क्योंकि वो नहीं है। जिसका अस्तित्व है वही तो तत्व है, जिसका अस्तित्व नहीं है उसको तत्व कैसे कहेंगे। और दुनिया में वेदांत के दृष्टि से दुनिया में अस्तित्व केवल एक वस्तु का है, यह तो आप लोगों ने सुना ही है ना। वेदांत के दृष्टि से, वेदांत के परिभाषा में अस्तित्व केवल एक वस्तु का है, बाकी किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और जिस वस्तु का अस्तित्व है और उसी को तत्व कहेंगे, और जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसको तत्व कैसे कहेंगे। वेदांत के दृष्टि से अस्तित्व केवल ब्रह्म का है, अस्तित्व केवल परमात्मा का है, अस्तित्व केवल आत्मा का है। अस्तित्व केवल ब्रह्म का है, अस्तित्व केवल परमात्मा का है, और अस्तित्व केवल आत्मा का है। मैंने ये तीन शब्द प्रयोग किया, इसका मतलब तीन वस्तु का अस्तित्व है। है ना, ये मैंने शब्द भले तीन प्रयोग किया हो, अस्तित्व ब्रह्म का है, अस्तित्व परमात्मा का है, और अस्तित्व आत्मा का है, इसका मतलब तीन वस्तु का अस्तित्व है, ये अर्थ नहीं। तीनों मिलकर एक है। मैंने ये शब्द एक ही वस्तु का तीन पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर दिया है। अब पर्यायवाची शब्द आप जितने प्रयोग करते जाओगे, इसका मतलब वस्तु अलग अलग है, ऐसा अर्थ नहीं होता है। पर्यायवाची जितने प्रयोग किया उतने ही वस्तु होंगे, ये अर्थ नहीं होता है। अब किसी ने कमल शब्द प्रयोग किया और किसी ने सरोज शब्द प्रयोग किया, है तो क्या दो वस्तु है? सबसे बढ़िया फूल कमल है, सबसे बढ़िया फूल सरोज है, इसका मतलब दो फूल बढ़िया है, है? एक ही फूल बढ़िया है, तो दो शब्द क्यों प्रयोग किया? पर्यायवाची शब्द है, एक ही वस्तु के बारे में कहने वाले ये शब्द दो वाला। इसी तरह अस्तित्व सिर्फ ब्रह्म का है, इसका मतलब हुआ ब्रह्म के अलावा और किसी का अस्तित्व नहीं है। तो फिर परमात्मा का क्या होगा? फिर आत्मा का क्या होगा भाई? अस्तित्व सिर्फ ब्रह्म का है तो आत्मा का क्या होगा? पर्यायवाची शब्द है परमात्मा आत्मा, ये पर्यायवाची शब्द है। जैसे माला और हार, ये दो शब्द हमने प्रयोग किया, वस्तु ये उठ एक ही है, एक ही का ये पर्यायवाची शब्द है माला, और माला का ही पर्यायवाची शब्द है हार। एक ने कहा माला ले आओ, एक ने कहा कि हार ले आओ, तो लाने वाला दो वस्तु लाएगा कि एक ही वस्तु लाएगा? है? एक आपके घर में आप अपने नौकर को कहोगे बाजार में जाकर एक हार खरीद के लेके आओ, और दूसरी बार आपने कहा ए जा बाजार जाकर बढ़िया माला खरीद के लेके आओ, तो वो दो वस्तु लाएगा कि एक ही वस्तु लाएगा? है? एक अनपढ़ व्यक्ति गवार भी पर्यायवाची शब्द को मानकर एक मानता है, तो तुम हम तो इतने दिनों से वेदांत सुनते आ रहे हैं, तुम हम तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, तब फिर ब्रह्म परमात्मा और आत्मा ये तीन वस्तु क्यों मान रहे हो? बोलो, क्या हम उस नौकर से भी गए गुजरे हैं? इतनी भी समझदारी नहीं आ रही हमारे में? और ये कहते फिर रहे कि परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, ब्रह्मा अलग है, हैं? इसलिए तत्व एक है, उसको अलग करो। तत्व एक है, उसको अलग करो। कैसे अलग करें महाराज? तो अलग करने की प्रक्रिया यहां बताई जाती है। अलग कोई क्रिया से नहीं करनी है। वेदांत में किसी भी वस्तु को किसी से अलग करने का मतलब कोई क्रिया से अलग करना नहीं है। वेदांत में क्रिया का कोई काम नहीं है। इसलिए हमारे प्रेमपुरी आश्रम में सब निकम्मे आते हैं। कौन आते हैं? बोलो, सब निकम्मे आते हैं, क्योंकि वेदांत के साथ काम का कोई काम ही नहीं है, काम का प्रयोजन नहीं है। निकाम से ही संबंध है, निष्क्रियता से संबंध है, क्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है। कहीं बनाना और बिगाड़ना हो तो क्रिया से संबंध है, क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। यहां बनाना कुछ नहीं है और बिगाड़ना कुछ नहीं है। बोलो, इसलिए कुछ काम है? वेदांत में कोई काम नहीं है, इसलिए निकम्मे लोग वेदांत में लगते हैं। निकम्मे लोग काम वाले काम करें। जैसे आपको रात्रि स्वप्न देखना है, क्या आप योजना बनाकर स्वप्न देखते हैं? कभी योजना बनाकर स्वप्न देखी है किसी ने? प्री प्लान करके योजना बनाकर स्वप्न देखी है? नहीं है। अच्छा, स्वप्न में किसी ने स्वामी जी को भोजन के लिए बुलाया, तो स्वप्न में रसोई बनानी पड़ेगी कि नहीं? क्रिया की आवश्यकता है। कोई रसोई बनाकर खिलाता है स्वप्न में? स्वप्न के पदार्थों को न बनाना है न बिगाड़ना है। बोलो, स्वप्न के पदार्थों को बनाना और बिगाड़ना बनता है? और वेदांत के दृष्टि में परमात्मा तत्व, आत्मा तत्व, ब्रह्म तत्व तत्व है, इसलिए उसको बनाना तो है ही नहीं। ब्रह्म को बनाना है, परमात्मा को बनाना है, आत्मा को बनाना है, हैं? तो बनाना नहीं है उसको। अच्छा भाई ब्रह्म को परमात्मा को आत्मा को तो बनाना नहीं, क्योंकि वो तो बनी बनाए है। शब्द हमने गलत प्रयोग कर दिए, ये शब्द भी हम गलत ही प्रयोग कर रहे हैं। बनी बनाया है ये शब्द करता है, प्रश्न आया कि किसने बनाया, कब बना, तो इसका उत्तर नहीं। इसलिए वो तो स्वतः सिद्ध है, इसलिए स्वयंभू यथा तथ्य तो अर्थान वेदता शाश्वतीभ्य समाभ्य परिभू स्वयंभू, श्रुति ने उसके बारे में ये कहा है। अब प्रश्न ये हुआ कि जगत को बिगाड़ना है कि नहीं, ब्रह्म को तो बनाना नहीं है। ब्रह्म अतिरिक्त, परमात्मा अतिरिक्त, आत्मा अतिरिक्त को बिगाड़ना है कि नहीं है? आत्मा को तो बनाना नहीं, अनात्मा को बिगाड़ना है कि नहीं? भाई अनात्मा तो है ही नहीं, तो क्या बिगाड़ेगा? स्वप्न के पदार्थों को बिगाड़ना बनेगा? इसलिए यहां क्रिया की आवश्यकता, क्रिया की आवश्यकता कहां पड़ती है? या तो बनाना हो क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, या बिगड़ना हो तो क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। वेदांत में न बनाना है न बिगाड़ना है, तो क्रिया की आवश्यकता नहीं है। क्रिया की आवश्यकता न हो तो निकम्मे हुए कि नहीं है? क्रिया माने काम, क्रिया की आवश्यकता नहीं है यहां तो तुम हम सब निकम्मे हुए कि नहीं? तो प्रेम प्रिय आश्रम में कौन आता है? निकम्मे आते हैं, काम वाले तो कोई नहीं आता है भाई, है न बनाने वाले आते हैं न बिगाड़ने वाले आते हैं। तत्व यही, यहां बनाने वाले और बिगाड़ने वालों का कोई मतलब नहीं है, यहां समझने वाले का। यहां कौन आता है? यहां समझने वाले आते हैं। वेदांत में समझदारी की आवश्यकता है, बनाना और बिगाड़ना नहीं है। तो समझदारी, यहां अलग करने का मतलब क्या हुआ? समझदारी, समझना है कि ये वस्तु ऐसा है, ये वस्तु ऐसा है, बस काम बन गया, इतनी से काम बन गया। तो पहले के पांच प्रकरण क्या हैं? विवेक, पहला प्रकरण तत्व विवेक। इसी तरह द्वितीय प्रकरण महाभूत विवेक, और तीसरा प्रकरण पंचकोश विवेक। भूतों से अलग करो, भूतों को अलग करो, अभूत से भूत को अलग करो, भूत विवेक, कोश विवेक, कोशों को अलग करो, द्वैत विवेक, और अंतिम में महावाक्य विवेक। इसी प्रकार के दूसरा पंचक है दीप। पहला पंचक विवेक, दूसरा पंचक दीप। विवेक में ही रोशनी है, दिखेगा, विवेक में दिखेगा। दिखेगा कब? रोशनी से दिखेगा। यही तो त्रिपुटी है। आंख, रोशनी और वस्तु। देखने के लिए तीन वस्तु चाहिए। कोई भी वस्तु देखने के लिए तीन चीज चाहिए। आंख चाहिए, केवल आंख होने से दिखाई नहीं पड़ेगा, रोशनी होनी चाहिए। आंख और रोशनी हो तो दिखाई नहीं पड़ेगा, वस्तु चाहिए। तुम्हारे पास आंख है कि नहीं है? रोशनी भी है कि नहीं? बंध्या के पुत्र को देख लो, काला है कि गोरा है, मोटा है कि पतला है, देख लो। वस्तु होना चाहिए। आंख है तुम्हारी, रोशनी है तो काक के दांत गिन लो कितनी है, बताओ। काक के मुख में दांत होनी चाहिए। आंख है तुम्हारी, रोशनी है तो गधे के सींग गिन लो। गधे के सिर में कितने सिंह होते हैं? एक को पूछा तो दो बोलता है। क्योंकि उसको अभ्यास था, भैंस के सिर में दो होते तो गधे के भी दो होंगे। सिर में सिंह दो होते हैं, उसको तो यही अभ्यास कह दिया। गधे के सिर में सिंह दो होते होती ही नहीं। अब क्या कर लोगे? आंख और रोशनी का क्या प्रयोजन है? पदार्थ होनी चाहिए। दीपा, दीप माने दीपक, प्रकाश है ना, विवेक आंख, दीप प्रकाश, जो चित्र दीप। बड़ा सुंदर है ये चित्र दीप प्रकरण, काफी बड़ा भी है और सुंदर भी है। तृप्ति दीप, सातवां तृप्ति दीप, आठवां कुटस्थ दीप, नौवां ज्ञान दीप, ध्यान दीप, ज्ञान दीप, ध्यान दीप, ध्यान दीप, फिर जाकर आनंद। आत्मानंद, ब्रह्मानंद, विषयानंद, अद्वैतानंद, विद्यानंद चतुर्थ, पंचवा विषयानंद। आनंद कहां कहां है उसको खोजो, तत्व कहां कहां है उसको खोजो, रोशनी कहां कहां है। ये पूरा पंचदशी का मूल आधार श्रुति क्या है वो याद रख लो। विद्यारण्य मुनि जी ने ये पंचदशी की जो रचना की है उसका आधार श्रुति है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत चित आनंद जो बोलते हो ना, तो श्रुति क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो तत्व में सत्य, पहला पंचक सत्य, दूसरा पंचक ज्ञान, दीप में ज्ञान आ गया, और तीसरा पंचक आनंद। आनंद कहां कहां है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, इस श्रुति को आधार बनाकर पंचदशी की रचना हुई है, और आगे क्या है कल चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।